हल्दी की रस्म के टाइम बातों ही बातों में चाहत के मुंह से ये निकल गया कि अगर वो कभी आहान से दूर हुई तो वो उसके बिना कैसे रहेगा। आहान उसकी इस बात से नाराज हो गया। वैसे भी आहान के लिए चाहत से दूर रहना कोई आसान काम नहीं था। चाहत आहान को मनाने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन शिवाली ने उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज दिया था। उसने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि शादी होने से पहले आहान और चाहत एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और वो इस बात का खास ख्याल भी रख रही थी। हल्दी की रस्म के बाद में शाम को संगीत और मेहंदी की रस्में एक साथ हो रही थी। आहान ने उस रस्म को अटेंड करने से मना कर दिया। उसने मीटिंग का बहाना बनाया और वो अपने कमरे में मुंह फैलाकर बैठा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल चाहत का था। मजबूरी में वो सबके साथ टेरेस पर थी, जहां संगीत और मेहंदी की रस्म एक साथ हो रही थी। चाहत ने एमरल्ड ग्रीन कलर का स्लीवलेस गाउन पहना हुआ था और बालों की प्रिंसेस ब्रेड बना रखी थी, जिसे फूलों से डेकोरेट किया गया था। चाहत के लुक को सिंपल ही रखा गया था ताकि वो मेहंदी लगाते टाइम इरिटेट ना हो। चाहत वहां होकर भी नहीं थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। चाहत ने अपनी मेहंदी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जिसके नाम की मेहंदी लग रही है वही यहां पर नहीं है, तो क्या फायदा है इस मेहंदी को लगाने का। पता नहीं कब उनसे बात होगी, कहीं गुस्से में वो शादी में आने से मन ना कर दे। सोचते हुए चाहत की आंखें नम होने लगी। श्रद्धा और तनु भी उसके पास ही बैठी हुई थी। तनु उसके उतरे हुए चेहरे का कारण समझ रही थी। श्रद्धा ने चाहत को परेशान करने के लिए उसे कोहनी मारते हुए मजाकिया तरीके से कहा, इतना मिस कर रही हो उन्हें कि तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं। जीजू मीटिंग के लिए ही गए हैं, कोई हमेशा के लिए छोड़कर नहीं गए जो ऐसे चेहरा उतर रखा है। मैंने तो पहले ही कहा था, एक बिजी इंसान से शादी करने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई स्पेशल मोमेंट चल रहा हो और बीच में ही जीजू। श्रद्धा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चाहत ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उनसे बात करनी थी पर नहीं कर पा रही हूँ। शिवानी आंटी को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, अचानक तनु ने कहा, जाकर आहान से बात करो, उसे मनाना ज्यादा जरूरी है। तनु ने चाहत के पास आकर धीमी आवाज में कहा था, इस वजह से श्रद्धा को सुनाई नहीं दिया। फिर तनु ने आगे थोड़े सीरियस टोन में कहा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सच में वो शादी में आने से मना कर दे। चाहत ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। रात के लगभग तीन रहे थे और चाहत की मेहंदी पूरी तरह लग चुकी थी। चाहत को आहान के पास भेजने के लिए तनु ने शिवानी को दूसरी तरफ बुलाकर कहा, आंटी देखे ना, चाहत कितनी थक गई है, बेचारी कब से बैठकर मेहंदी लगवा रही है। कल शादी के वक्त भी काफी सारी रस्में होगी, पूरी रात तक भी जागना पड़ेगा, थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज देते हैं ना इसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन चाहत डांस करने वाली थी, उसका अभी डांस भी नहीं हुआ, थोड़ी देर और रुक जाती, सुबह देर से उठ जाएगी। आहान भी यहाँ नहीं आया, कम से कम चाहत यहाँ है तो ये तसल्ली तो है कि हमें अकेले रस्म नहीं करनी पड़ रही है, शिवानी ने जवाब दिया। फिर उनकी नज़र चाहत की तरफ गई, जो वाकई काफ़ी थकी हुई थी और उसका चेहरा भी कमज़ोर लग रहा था। जब से आहान ने उसे बात करना बंद किया था, चाहत ने ठीक से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। चाहत का चेहरा देखने के बाद शिवानी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, इसे सच में आराम की ज़रूरत है, ऐसा करो इसे नीचे इसके रूम में छोड़ाओ, बाकी हम देख लेंगे। शिवानी के हाँ कहते ही तनु खुश हो गई। वैसे भी वहाँ सब ऊपर थे, तो अगर चाहत आहान से बात करने जाती भी है तो उसके पीछे कोई नहीं आने वाला था। तनु तुरंत चाहत को आहान के रूम के पास लेकर गई। चाहत को वहां छोड़ने के बाद तनु ने थम्स अप करते हुए कहा, गुड लक, उसे मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मनाए बिना बाहर भी मत आना, अगर शिवानी आंटी इस तरफ आई तो मैं संभाल लूंगी। चाहत ने तनु को थैंक्स कहा और फिर उसके जाने का इंतजार करने लगी। उसके जाने के बाद चाहत ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे जाए, वो तो डोर तक नॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। चाहत ने फिर अपने कंधे से दरवाजा खटखटाया। आहान को लगा कि कोई हाउस हेल्पर है, वैसे भी शिवानी ने इस बीच काफी बार उसे ऊपर आने का कहलवाया था। आहान ने इरिटेट होकर तेज आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कितनी बार बोल दिया कि मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ, अब अगर तुमने वापस मेरे रूम के आगे आकर डोर लॉक किया है तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आहान की आवाज से ही चाहत समझ गई थी कि वो कितने गुस्से में है। फिर चाहत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, आहान मैं हूँ, प्लीज डोर खोलिए इससे पहले कि कोई आ जाए। आहान कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन चाहत उसके रूम के बाहर खड़ी और वो दरवाजा ना खोले ऐसा होना इम्पॉसिबल था। वो जल्दी से बेड से उठा और चाहत के लिए दरवाजा खोलकर उसे रूम के अंदर लिया और दरवाजा फिर से बंद कर लिया। उसने देखा चाहत का चेहरा उतरा हुआ था और उसने लगभग कोहनी तक दोनों हाथों की मेहंदी लगवा रखी थी। आहान कुछ कहता उससे पहले चाहत जाकर उसके सीने से लग गई। उसने धीरे से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, आप जानते हो मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, पर ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, प्लीज आप मुझसे नाराज मत रहो, आप नाराज होते हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझसे रूठ गई हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ, तो प्लीज आप मेरी छोटी सी गलती को माफ नहीं कर सकते क्या। बोलते हुए चाहत की आंखों से आंसू बहने लगी। डॉल, अच्छा ठीक है डॉल, आगे से मत कहना, पर कम से कम रोना तो बंद करो, मैं नाराज था तो आकर मुझे मनाओ ना, इस तरह रोने से कौन सा नाराजगी दूर हो जाएगी, आहान चाहत से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, आगे से मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और ना ही कोई तीसरा हमारे बीच में आएगा। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर आहान ने फिर से चाहत को गले लगा लिया। उसने उसे काफी कस के पकड़ रखा था, जैसे चाहत उससे दूर चली जाएगी। कुछ पल बाद चाहत अचानक बोली, कितना कुछ प्लान किया था, साथ डांस करेंगे, सब खराब हो गया। उसकी आवाज में मायूसी थी। बस इतनी सी बात, मेरी डॉल कुछ एक्सपेक्ट करे और वो पूरा ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। आहान ने मुस्कुराकर कहा और म्यूजिक प्ले किया। आहान ने चाहत की कमर पर हाथ रखा और उसे करीब खींचते हुए कहा, देखा तैनु पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया, हो तेरे अगे पीछे घूमे सोनिया, जदो तेरे हाथ चुम्मे सोनिया, मीठा मीठा जी हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। आहान के फेस पर एक छोटी जेन्युइन स्माइल थी, चाहत के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आहान की आंखों में देखते हुए बोली, मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना, जे तेरे ते रब विच तक्का ना पावे ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना। आहान ने चाहत को घुमाकर अपने सीने से लगा लिया और सिंक करके कहा, तू जदो तेरी जुल्फानु खोलिया, मेरे कोलो गया नहीं जे बोलिया, मेरी तू कमी हो गया, दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। चाहत आहान से दूर हुई और गाने के जरिए अपने जज्बात जाहिर करते हुए सिंक किया, ये महल मुनारे सूरज तारे, हमसे परे ले जाइए, हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए।
ये महल मुनारे सूरज तारे, हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए। डांस करते हुए चाहत ने आहान को पास आने का इशारा किया। आइए जी आइए मेरे पास, इतना आइए, नजरें मिला के मेरे हाथ चूम जाइए, ओ मेनू ऐसा नशा चढ़ा दे ढोलना, जो सीधा रबना मिला दे ढोलना। उसके ऐसा कहते ही आहान ने तुरंत ही चाहत के फॉरहेड पर किया, ओ जगदिया नजरा बुरियां, ओ सिरुते मिर्चा करा दे ढोलना। आहान ने चाहत को सीने से लगाकर कहा, ओ तेरे जैसा यार किथे होवे वे, जो रौंदियां जे जख्मा ने धोवे वे, तू जानियो नदी हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। आहान ने चाहत बैठाकर उसके पैरों को अपने हाथ में लिया और उसे पायल पहनाते हुए कहा, ओ जहां जहां तेरे पैर पड़े वहां वहां नजारे हैं, तू मेरा चंद्रमा और हम तेरे तारे हैं, ओ जहां जहां तेरे पैर पड़े वहां वहां नजारे हैं, तू मेरा चंद्रमा और हम तेरे तारे हैं। चाहत ने आहान की आंखों में देखते हुए कहा, तारे हैं तारे तेरी आंखों के तारे, मारे हैं मारे तेरी बातों के मारे, हो तैनू वेख बदला ने रंग बदले, हो उड़दे परिंदिया ने फंग बदले, ते चन सोचे मैं की बदला, हो यारा तेरे करके मलंग बदले। आहान ने आगे सिंक किया, ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में, सूनी सूनी काली काली रातों में, तू रोशनी हो गया, दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। देखा तैनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया। डांस करते हुए आहान ने चाहत को अपनी बाहों में भर लिया, फिर आहान चाहत को बेड पर लेकर आया। चाहत का सर आहान के गोद में था और वो उसके बालों को हल्के हल्के सहला रहा था। तुम्हें पता है डॉल, दोपहर से तुम्हारे बिना रहना कितना मुश्किल हो रहा था, पहले क्यों नहीं आई मुझे बनाने के लिए, आहान बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। मौका ही नहीं मिला, अभी भी तनु की हेल्प से यहाँ आई हूँ, वरना आपकी मॉम ने मना किया है आपसे मिलने के लिए और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, चाहत ने मासूमियत से जवाब दिया, जिस पर आहान के चेहरे पर हंसी के भाव थे। आहान के हंसने पर चाहत ने मुंह बनाया तो आहान ने तुरंत ही अपना चेहरा नॉर्मल करके कहा, बेस्ट बहू का अवार्ड तुम्हें ही जाने वाला है डॉल, लगी रहो मॉम को इम्प्रेस करने में, जितना तुम उनसे डरती हो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है वो, तुम्हें कितनी बार समझाऊं। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ ही देर में चाहत को नींद आ गई थी, क्योंकि आहान धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां घुमा रहा था, वैसे भी वो काफी थकी हुई थी। चाहत के सोने के बाद आहान ने उसके फोन सिर पर किस करके कहा, आई लव यू सो मच डॉल, आई रियली लव यू, और तुम चाहोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी दूर चली भी गई तो खींचकर वापस अपने करीब ले आऊंगा, बोलते हुए उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। फिर आहान ने महसूस किया कि चाहत उसके रूम में है। हालांकि आहान को उसकी मॉम के कुछ भी कहने और डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी चाहत के लिए उसने धीरे से चाहत का सिर अपनी गोद से हटाया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए डॉल, ताकि मॉम की तरफ से तुम्हें अच्छी बहू होने के फुल पॉइंट्स मिल सके, चलो तुम्हारे रूम में ले जाकर सुला देता हूँ, इससे पहले कि मॉम को देखकर तुम्हें उनसे डर लगे। आहान चाहत को ले जाकर उसके रूम में सुलाया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया था। चाहत उसे मनाने के लिए इतना रिस्क लेकर आई, ये उसे काफी अच्छा लगा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा रात होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कल रात दानिश और उसके किसी भी आदमी ने शराब नहीं पी थी और वहां कड़ा पहरा दे रहे थे। आहान किसी भी मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि जब तक आहान और चाहत की शादी नहीं हो जाती, वो अक्षरा और दामिनी पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं उनके इतनी सिक्योरिटी के बीच विजय भी बाहर नहीं आ पाया था। अक्षरा अपनी सेल में बैठकर आंसू बहा रही थी। उसने सुबकते हुए धीरे से कहा, क्यों कर रहे हो तुम ये आहान? मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली तुमने। ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुमने उसे अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस दी है? मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखना चाहती हूँ आहान। भले ही तुम उससे शादी कर लो, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकली, उस दिन तुम्हारी और उसकी जिंदगी का एक साथ रहने का आखिरी दिन होगा। पहले जहाँ अक्षरा बाहर निकालकर आहान की शादी बर्बाद करने का सोच रही थी, वहीं आहान की प्लानिंग देखने के बाद अब अक्षरा ने ये सोचा था कि भले ही चाहे आहान और चाहत शादी कर ले, लेकिन जिस दिन वो यहाँ से आजाद हुई, वो सबसे पहले उन्हें अलग करेगी। वहीं अगले दिन वो वक्त आ गया था जब आहान और चाहत दुनिया की नजरों में एक होने वाले थे। वैसे तो उन दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं रही थी, पर फिर भी आज ऑफिशियली शादी के बाद आहान चाहत को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। शादी से पहले आहान और चाहत तैयार हो चुके थे। चाहत ने आईवी कलर का शादी का जोड़ा पहना था जिसके साथ एमरल्ड ग्रीन ज्वेलरी थी। उसने रॉयल लुक लिया हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं आहान ने भी उससे मैच करता हुआ आईवी कलर का ड्रेस पहना था। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। चाहत के तैयार हो जाने के बाद श्रद्धा ने उसे देखा और फिर उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, चलो जी, हमारी फ्रेंड जो पहले ही पराया हो चुकी थी, वो आज ऑफिशियली पराई होने जा रही है। चाहत ने श्रद्धा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने एक नजर खुद को आईने में देखा तो वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुद को देखकर चाहत ने धीरे से कहा, आई होप सब कुछ अच्छा हो, वरना अब तक लाइफ में यही हुआ है कि जब भी अपनी खुशियों के करीब जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और पूरी दुनिया ही बदल कर रह जाती है। प्लीज इस बार कोई गड़बड़ ना हो। चाहत और आहान की शादी ओबरॉय पैलेस के बजाय मुंबई के सबसे बड़े मैरिज पैलेस में होने वाली थी। चाहत इस वक्त ओबरॉय मेंशन में थी और आहान के आने का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों साथ में वेन्यू के लिए निकल सके। श्रद्धा और तनु चाहत को अकेला छोड़कर चली गई क्योंकि कुछ ही देर में आहान आने वाला था। आहान के आने के इंतजार में चाहत आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तभी उसे अपने पीछे एक लड़की दिखाई दी जिसने रेड कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसका हाल ठीक नहीं लग रहा था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त और मैले थे और बाल भी बिखरे हुए थे। वो कोई और नहीं, अक्षरा गोयंका थी।